मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं खासकर प्री एग्जामिनेशन को लेकर के ज्ञान और अनुमान, इस विषय पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन इससे पहले आइए, जो दो छोटी छोटी खबरें हैं उन्हें थोड़ा जान लेते हैं। मैं आज आपको दैनिक भास्कर का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ रेवड़ी संस्कृति के ऊपर। आपने अगर चैनल दूरदर्शन का चैनल कल देखा हो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साफ तौर पर ये कहा है कि ये जो रेवड़ी संस्कृति हमारे यहाँ विकसित हो रही है, इस पर विचार किया जाना चाहिए, ये बहुत ही खतरनाक है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। रेवड़ी संस्कृति क्या है, उनका इशारा किस तरफ था? होता यह है कि देखिए, जब चुनाव आने को होते हैं तो आप देखिए कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो ढेर सारे वायदे करते हैं। अब ये वायदे दो प्रकार के होते हैं। आपको रेवड़ी संस्कृति को समझना होगा कि प्राइम मिनिस्टर क्या कहना चाह रहे हैं। एक इस तरह के वायदे हैं कि हम जो भी हमारे वोटर हैं या जो भी हमारे राज्य में रहने वाले लोग हैं उनको हम फ्री साइकिल देंगे, फ्री मोबाइल देंगे, फ्री फ्री ये करेंगे। ये एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष है कि आप इस तरह की चीज़ें फ्री देने के लिए कह रहे हैं, फ्री ही देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं जिससे उनके जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ेगा या उत्पादकता बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पर, शायद इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई राजनीतिक दल यह वायदा करती है कि अगर वह सत्ता में आई तो वह किसानों को फ्री बिजली देगी। अब यहाँ देखिए, किसान शब्द है, किसानों को फ्री बिजली देगी, यह वायदा हुआ। तो वैसे ऊपरी तौर पर तो यह रेवड़ी संस्कृति ही दिखाई दे रही है, लेकिन इनफैक्ट यह शुद्ध रूप से रेवड़ी संस्कृति नहीं है। जहां भी फ्री शब्द आएगा आप ये मत समझ लीजिएगा कि यह रेवड़ी संस्कृति का हिस्सा है। किसानों को जब हम फ्री बिजली देंगे तो देखिए, हमारे खेती पर कितना दबाव है। किसान खेती छोड़ना चाह रहे हैं, लाभ का काम नहीं रह गया है, तो सीधी सी बात है कि थोड़ा सा इस पर नियंत्रण लगेगा कि लोग कृषि व्यवसाय को छोड़ने में थोड़ा सा रुकेंगे। अगर उन्हें फ्री बिजली मिलेगी तो जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आएगी, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो उनका जो उत्पाद होगा, उस उत्पाद का जो मार्केट रेट होगा वो भी थोड़ा सा कम होगा, और अगर मार्केट रेट कम होगा तो इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का हिस्सा हो गया, हमको मिलेगा। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली तो वो फ्री संस्कृति दिखाई दे रही, रेवड़ी संस्कृति दिखाई दे रही, लेकिन इनफैक्ट वो है नहीं। इस एडिटोरियल को आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बातें मिलेंगी। जैसे उज्ज्वल योजना, हमारे उज्ज्वला योजना आई और उसमें ग्रामीण के जो हमारे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको गैस सिलेंडर देने की बात कही गई, फ्री सिलेंडर देने की बात कही गई। तो अब ये भी रेवड़ी संस्कृति जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन आप सोच करके देखिए कि उससे महिलाओं को कितना लाभ हो सकेगा, स्वास्थ्य पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकेगा। तो ये अभी तो सीधे सीधे खर्च जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इनफैक्ट ये दूसरे रूप में वापस आ जाता है। तो पहली बात तो यह है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा कि रेवड़ी संस्कृति क्या होती है। दूसरी बात कि जब कोई भी सरकार अपने चुनाव के दौर में ये वायदा करती है या राजनीतिक दल वायदा करते हैं तो सीधी सी बात है कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसके लिए वो धन कहाँ से लाएंगे। बहुत ज़रूरी है, राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और हम इस तरह से फ्री बांटने की बात कह रहे हैं तो वह गलत हो जाती है। और पूरे के वैश्विक स्तर पर भी अभी दिखाई दे रहा है आपको, जैसे श्रीलंका की बर्बादी के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही है कि वहाँ इस तरह की चीज़ें खूब की गई। शायद बोलीविया वो देश है जहाँ इस तरह की चीज़ें खूब बांटी गई और वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ख़राब हो गई, बहुत बुरी हो गई। तो हमारे सामने प्रमाण है कि अगर हमने रेवड़ी संस्कृति को बहुत ही तार्किक नहीं बनाया तो इसके नतीजे देश को बहुत भयानक रूप से भुगतने पड़ सकते हैं। तो चूंकि अब प्राइम मिनिस्टर ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है तो मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो थोड़े से आप पॉइंट्स इस पर नोट कर लें। दोस्तों, मैं एक आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या आप मुझे मिलग्रोमियन डायनेमिक्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या आप मिलग्रोमियन डायनेमिक्स के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? क्या आपको मेरा यह प्रश्न थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस लगा या अटपटा सा लगा? आप अपना मूल्यांकन कीजिए। इसलिए क्योंकि इस पर हमने कल बात की है। अब चौंक गए होंगे कि बात तो नहीं हुई है, तो फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि बात की है। जी हां, अब मैं आपको बताता हूं। कल मैंने आपको हिंदुस्तान अखबार का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड किया था जिसका शीर्षक था न्यूटन से आगे। याद आया? इसके साथ आपने क्या किया? आपने छोड़ दिया इसे या आपने इसे पढ़ा? अगर छोड़ दिया तो क्यों छोड़ा, सोचिए। न्यूटन का नाम है, न्यूटन का नाम तो नया नाम नहीं है। चलिए, अगर उसका शीर्षक मिलग्रोमियन डायनेमिक्स होता तब आप छोड़ भी देते, यार ये क्या नया नाम है, ये तो बेकार लग रहा है, सर ने पता नहीं कैसे दे दिया। लेकिन उसमें तो न्यूटन का नाम है, तो न्यूटन का नाम तो आप जानते हैं, तो इसका मतलब है कि इसका विज्ञान से कोई ना कोई संबंध तो होगा ही, पहली बात। दूसरी बात, ये खबर नहीं है, एडिटोरियल है, इस पर एडिटोरियल लिखा गया है। और हिंदुस्तान जैसा प्रतिष्ठित अखबार, राष्ट्रीय अखबार, वो इस पर अगर एडिटोरियल लिख रहा है तो क्या आपको नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, ये महत्वपूर्ण घटना है तो मैं इसे एक बार पढ़ूं? तो फिर ठीक है, चलिए आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आपने क्या किया? पढ़ करके निपटा दिया इसे, या इसमें से अपने लिए कुछ हासिल भी किया, कुछ ग्रहण भी किया, कुछ नोट भी किया, कुछ लिखा भी? आपने क्या किया? अगर आपने नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा? और आप अगर आपने यूं ही छोड़ दिया तो फिर पढ़ने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि उससे जो प्रश्न पूछा जा सकता है वही मैं यहां आपसे पूछ रहा हूं, और वही आप बता नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या फायदा हुआ पढ़ने से? ज्यादा अच्छा होता कि छोड़ ही देते, 5-7 मिनट जो पढ़ने में लगा होता वो आपके बच जाते। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने झूठे आत्म प्रशंसा के शिकार, आत्मसंतोष के शिकार नहीं होते। आत्म प्रशंसा तो नहीं करना चाहिए, आत्मसंतोष के शिकार नहीं होते कि यार चलो सर ने दिया था तो हमने पढ़ तो लिया। दोस्तों, ये आपके पढ़ने का तरीका निर्धारित करता है, और अभी आपका तरीका क्या है उसे बताता भी है। मैं आपको इसके बारे में बताने नहीं जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। बकायदे कल न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स के तहत ये आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन है और आप मानते हैं कि नहीं इसके बारे में तो हमें जानना ही चाहिए, तो आप उसे पढ़ें, और पढ़ने के बाद उसमें जो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात लगे, थोड़ी सी ही, मुश्किल से 3-4 लाइनें, ये 50 लाइन का होगा पूरा का पूरा एडिटोरियल कमेंट, तो इसमें 3-4 लाइनें जो इसका सार है, बस आपके लिए उतनी ही बात जरूरी है, ज़्यादा नहीं, उसे आप नोट कर लें। तो यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। दोस्तों, अब मैं आता हूँ मुख्य विषय पर, ज्ञान और अनुमान। ये टॉपिक भी आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगा होगा, ज्ञान और अनुमान पर सर क्या बात करने जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि मैंने इससे पहले इसी के अंतर्गत आपसे चर्चा की थी कि जब आपके पेपर हो जाते हैं, जैसे जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर हो गया, तो बहुत से संस्थान या ऑनलाइन जो कोचिंग दे रहे हैं वो इसका एक्सप्लेनेशन निकालते हैं, मतलब जो क्वेश्चंस हैं उसमें जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस के बारे में बताते हैं, और उसके आधार पर वो निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। देखिए, जब हम एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तब ऐसा ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि वो तो साफ साफ कह रहे हैं ना कि ये जो पहला ऑप्शन है इसका क्या मतलब है, दूसरा ऑप्शन है इसका क्या मतलब है, तीसरा ऑप्शन है इसका क्या मतलब है, चौथा ऑप्शन है इसका क्या मतलब है, और फिर इनमें से कौन सा सही है। यानी कि उनकी जो पूरी दृष्टि होती है वो साफ तौर पर नॉलेज पर बेस्ड दृष्टि होती है। वो बकायदे आपको बताते हैं कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, और बहुत से एक्सप्लेनेशन में बकायदे नीचे सोर्स भी दे दिया जाता है कि यह वहाँ से लिया गया है, और आप उसे पढ़ लेते हैं। तो मैं यहाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर मैं अपने हल को पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड बनाता हूँ या नॉलेज पर बेस्ड बनाता हूँ तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन इसका जो व्यावहारिक पक्ष है, जो मुझे थोड़ा चिंतित करता है, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो ये कि क्या सच में हमारी इतनी क्षमता है कि हम इतना नॉलेज इकट्ठा कर सकें, हम इतनी चीज़ें पढ़ सकें, पढ़ने के बाद इतनी चीज़ों को हम दिमाग में रख सकें, और दिमाग में रखने के बाद एग्जामिनेशन हॉल में हम उनका समुचित रूप से इस्तेमाल कर सकें, क्या हम इसके लायक हैं, और क्या यही सही मायने में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन का तरीका है। दोनों ही चीज़ें हैं, हम अपनी क्षमता को भी देख रहे हैं और हम तरीके को भी देख रहे हैं। इसीलिए इस विषय का नाम मैंने रखा ज्ञान, कि हम कितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। देखिए सोर्स तो हम ढूंढेंगे तो हर का सोर्स मिल जाएगा, किसी मैगजीन में होगा, किसी किताब में होगा, और गूगल को तो आप मेंशन कर ही सकते हैं क्योंकि गूगल में तो सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी। लेकिन सवाल हमारे लिए ये उठ के खड़ा होता है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए व्यवहारिक कितनी हैं, क्या हमारे लिए ऐसा कर पाना संभव है। जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तब तो समझ में आ जाता है कि हाँ हाँ यार ये ठीक है, अरे उसमें पढ़ लिया होता, अरे उसमें देख लिया होता तो देखो ये हमारा ठीक बन जाता। तो आपने ऐसा कर क्यों नहीं लिया? एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आपके पास इतना लंबा वक्त बचा था, मिला था आपको, आप कर लेते। तो हो जाने के बाद जब हम सोचते हैं कि काश हमने ऐसा कर लिया होता, तो ये केवल एक दिमागी पुलाव है, ख्याल है, कुछ नहीं है, क्योंकि व्यावहारिकता में वो संभव नहीं है। और अगर आपको पता लग जाता कि ऐसा करना चाहिए, ये एग्जामिनेशन में आ रहा है, तो आप ऐसा कर लेते, आप अपने को रोकते नहीं। तो इसके बहुत ही व्यावहारिक पक्ष को आप समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि एक्सप्लेनेशन के आधार पर, ज्ञान के आधार पर प्री एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना संभव नहीं है। एक सीमा तक तो है, लेकिन उस सीमा के परे संभव नहीं है। तो फिर संभव कहाँ है? उसके लिए मैंने दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया है, अनुमान। इस पर हम लोग आगे और बातें करेंगे। दोस्तों आज बस इतना ही, क्योंकि वक्त हो चला है। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। हम लोगों की जो ऑफलाइन क्लासेस 7 से 21 अक्टूबर के बीच होने वाली हैं, उसके लिए 2 नौजवान साथियों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। ये हैं शम्स कमर, जो किशनगंज बिहार से हैं, और दूसरे दोस्त हैं आयुष कुमार, जिनका गांव है जज्जौर, जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो शम्स और आयुष, आप दोनों का एकेडमी की मैं अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से 2 दोस्तों के नाम हैं अबू होरेरा बांसवाड़ी अररिया बिहार से और सुयस तिर्की, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।